नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के बैंक ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कानूनी और नियामक ढांचे के अंतर्गत काम करते हैं। वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये जानकारी दी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जाने केवाईसी ढांचे और दिशा निर्देशों के अंतर्गत बैंकों को ग्राहक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी होती है। उन्होंने बताया कि 5 अलग अलग अधिनियम हैं और बैंकों को इन कानूनों का पालन करना होता है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, क्रेडिट सूचना और कंपनी अधिनियम तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर एक ही चरण में मतदान अगले महीने की 23 तारीख को होगा। 6 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन से शुरू होगी। 9 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के तहत असम और पुदुचेरी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में असम की प्रगति सबके सामने है और राज्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के कारण लोग डबल इंजन वाली एनडीए सरकार के अगले 5 वर्षों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की एनडीए सरकार ने पिछले 5 वर्ष में पुदुचेरी के लोगों की आकांक्षाएं पूरी की हैं। सरकार ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले केरोसिन तेल के वितरण की अनुमति दे दी है। विश्वभर में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य सामान्य स्थिति में केरोसिन का उपयोग बंद होने वाले क्षेत्रों में खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करना है। 2 और भारतीय एलपीजी टैंकर 94,000 टन एलपीजी के साथ स्वदेश आ रहे हैं। दोनों टैंकरों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। एक एलपीजी टैंकर BWTYR कल मुंबई पहुंच सकता है, वहीं दूसरा टैंकर BWELM के 1 अप्रैल को न्यू बेंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण हुर्मुज जल डमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने पश्चिम एशिया संकट के बीच देश को ईंधन भेजने में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। कोलंबो में पेट्रोलियम की एक बड़ी खेप पहुंचने के बाद श्री दिसानायके ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से श्रीलंका में ईंधन की कमी के बारे में बात की थी। शनिवार को कोलंबो में 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल की खेप पहुंचने के बाद उन्होंने भारत के त्वरित सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण ईंधन की कीमतों में हुई भारी वृद्धि से राहत देने के लिए ऑस्ट्रेलिया जून के अंत तक घरेलू उपयोग के लिए ईंधन उत्पाद शुल्क आधा कर देगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज ये घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया में कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय मानक मूल्य $116 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया, जो 2 सप्ताह में उच्चतम स्तर पर है। श्री अल्बनीज ने कहा कि सरकार भारी वाहनों पर लगने वाला ये शुल्क भी 3 महीने के लिए स्थगित कर देगी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने जम्मू संभाग में 100 स्कूलों में हर्बल उद्यान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर 53 लाख रुपए की लागत आएगी। जम्मू कश्मीर में आयुष निदेशालय के अनुसार इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को स्कूली शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करके औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देना है। जम्मू में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने विभिन्न जिलों से इस परियोजना के लिए 10 विद्यालयों का चयन किया है। छत्तीसगढ़ में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल के 6 दिन रायपुर में तीरंदाजी, हॉकी और फुटबॉल प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि कुश्ती प्रतियोगिताएं सरगुजा में जारी रहेंगी। एथलेटिक्स स्पर्धाएं आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में शुरू होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।